ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज की बाबा की मुरली बहुत ही शिक्षाओं भरी मुरली है। हम सभी राजयोगी हैं, भविष्य में विश्व महाराजन बनने वाले, लेकिन अभी भी बाबा कहते हैं तुम स्वराज्य अधिकारी हो, विश्व राज्य अधिकारी तो बाद में बनेंगे। तो स्वराज्य अधिकारी का अर्थ आज बाबा बता रहे हैं, स्व पर राज्य, अपनी इंद्रियों पर राज्य। कैसे ये इंद्रियां हमें धोखा देती है, सबसे ज्यादा कौन सी इंद्री धोखा देती है? बाबा कहती आंखें। फिर आंखों के बाद कौन सी इंद्री बहुत धोखा देती है? जीभ। फिर जीभ के बाद तीसरी कौन सी इंद्री धोखा देती है? कान। ये तीन मुख्य इंद्रियां बहुत धोखा देती है। लेकिन तो बाबा कहते हैं तुम्हें इन पर ही जीत पानी है। फिर बाकी है नाक और त्वचा। तो एक एक विकार एक एक इंद्री के साथ संलग्न है। तो काम विकार त्वचा से संलग्न है। बाबा कहते दिल होती हाथ लगाएं, वो भी तो विकार है, हाथ क्यों लगाना है? हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, छोटे बच्चों को भी नहीं लगाने। कई भाई मिलके छोटी कन्या कुमारी छोटी है तो समझते तो छोटी है ना, लेकिन कई ऐसी कुमारियां छोटी भी होती है तो भी बहुत अपने आप को स्ट्रिक्ट लगती है, कोई भी मुझे पुरुष हाथ न लगाए, क्योंकि ये भी काम वृत्ति का ही एक स्वरूप है। तो बाबा कहते त्वचा। फिर दूसरा है क्रोध, तो उसके लिए कौन सी इंद्रिय है? ये वास्तव में आंखें। गुस्सा आता है ना, देखते हैं तो गुस्सा आता है। फिर लोभ जीभ। फिर मोह ये नाक, दिल होते बस इनको ही सूंघे है ना, तो जैसे तो ये भी एक मोह की निशानी है। और अहंकार है कान, किसी ने मेरे लिए कुछ कहा तो ये एकदम भड़क जाते हैं, तो ये मुझे क्यों कहा, अभिमान आ जाता है। तो ये कान, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका कारण क्या है? ये पांच इंद्रियों के हम वश है। तो बाबा कहते हैं अब इन पर तुम्हें जीत पानी है। तो कैसे जीत पाएंगे? तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, तो तुम्हारी युद्ध है इन विकारों से, पर जो विजयी बनेंगे वही विजय माला के मणके बनेंगे। तो आज की मुरली पूरी ही धारणा युक्त है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और सबसे सहज पुरुषार्थ उसके लिए क्या है? बाबा कहते अपना पोता मेल रखो, अपना चार्ट रखो, इससे आप अपने ऊपर अटेंशन देंगे। और फिर भी कोई इंद्री धोखा देती है तो अपने आप को चूटी मारो। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही करते थे, मन अगर भटकता है तो बाबा क्या करते थे? हे मन तुम क्यों भटकते हो, तो अपने आप को ऐसे चुमकी मारते थे। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने आप को सावधान करो, ये इंद्री मुझे धोखा क्यों देती है? तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 17/7/2025 है। मीठे बच्चे ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। उस दिन भी बाबा ने कहा तुम व्यापारी हो, तो व्यापारी क्या करते हैं? अपना पोता मेल रोज देखते हैं। ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्म इंद्री धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? कई आदतें बहुत बुरी होती है, लेकिन सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जुबान का स्वाद। गुलाब जामुन देखा, रसगुल्ला देखा, बस डाल दिया मुंह में, भाई जिसने रखा है किसके लिए रखा है सोचते भी नहीं, बस डाल दिया मुंह में, भोग लगना है क्या होना है पूछे भी ना, बस खा लिया। तो बाबा कहते हैं जुबान, जुबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा करके भी खा लेंगे ताकि कोई देखे ही नहीं। छिपाना अर्थात छिपाना, चाहे कुछ भी छिपाना, ये चोरी है, है ना? छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन क्या है? हाँ, इनसे कैसे बचे? इनसे बचने का साधन है, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। क्यों मेरी बुद्धि गई, क्यों मेरी दृष्टि गई, हाँ? तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ, थप्पड़ भी मारो खुद को, चुमटी भी मारो, फटकार लगाओ, सजा भी दो। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। बाप की याद भी तब आएगी जब आत्माभिमानी होंगे। हम आत्माभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया भी हुआ है शिव शक्ति पांडव सेना, ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। आज बाबा ने बहुत बड़ा अंतर बताया उस सेना और इस सेना में। उस जिस्मानी सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े थोड़ी सेना में भर्ती होंगे। उस जिस्मानी सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते। और इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान सब बैठे हैं, है ना? सब प्रकार के बैठे हैं, सब आयु के बैठे हैं। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। ये है कौन सी सेना? माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। तो बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। चार्ट में ये भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाए, ये करें। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्म इंद्री देखो, कौन सी कर्म इंद्री बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। तो अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देती है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा देती है। भले सर्विस अच्छी करते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं ना, तो सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती है। तो इस पर बड़ी जांच रखनी होती है। हाँ, क्यों जांच रखनी होती है? क्योंकि दुश्मन है ना, कभी दुश्मन वार कर सकता है। देखो हमारे सैनिक कैसे बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी दुश्मन वार कर सकता है। तो ये माया भी तो दुश्मन है ना, कभी भी वार कर सकती है। तो अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बस सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं ना, ऐसे करते हैं, चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए खुद को। सुना? कोई भी इंद्री धोखा दे, खुद को सजा दो। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। अब कोई क्रोध कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम तो क्रोध नहीं करेंगे ना, हम क्या करें? किनारा कर दो, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर के देखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो आग हमको भी पकड़ लेगी ना? तो खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा है, घर घर में स्त्री पति के बीच कितना झगड़ा होता है। स्त्री पुरुष का भी बहुत झगड़ा हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि भी जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, बैठते हैं है ना, आंखें बंद करके बैठते हैं अपनी तपस्या में। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं, पीठ देकर बैठते हैं, स्त्रियां पीछे बैठती है और वो सन्यासी केवल पुरुषों को ही देखता है। हम तो एक जगह गए थे, वहां केवल पुरुष ही पुरुष दिखे, तो मैंने कहा यहाँ बहनें नहीं है, स्त्रियां नहीं है क्या? तो कहा नहीं, वो पीछे एक जाली, जाली की दीवार थी और अंधेरा था, तो वो जाली की दीवार के पीछे बैठी थी स्त्रियां। क्योंकि वो भले देखे, लाइट में देखे, पर वो महात्मा जी उन स्त्रियों को न देखे, इसलिए उनके लिए अंधेरा और पुरुषों के लिए लाइट। ना देखो, महात्मा की दृष्टि स्त्री पर न जाए। तो बाबा कहते इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? चलो कितना भी कुछ भी करते हैं, त्याग करते हैं, उन सन्यासियों को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे। एक सत्संग में चलो, वो उनके जो शिष्य है वो उनके आगे भेटा रखेंगे, तो 10-20 लाख करोड़ भी इकट्ठा कर लेंगे। मर गए तो खलास, वो धन उनके कहाँ काम आएगा? मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े दोबारा। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है। बाबा जो खजाने देते हैं वो अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहां धन की लालच होती नहीं होगी। सत्युग में धन की लालच को छिपा कर रखेंगे क्या अपने जेब में या लॉकर में छिपा करके? वहां तो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं, वहां धन की लालच होती ही नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति होती ही नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सत्युग आदि में रात दिन का फर्क है। अभी कलयुग में क्या हो रहा है, सत्युग में क्या होगा, हाँ रात दिन का फर्क है। वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। केवल संगम नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग जरूर लिखो। तो साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, इस संस्था का यही उद्देश्य है ना, मनुष्य से देवता बनना। लेकिन कैसे बनते हैं, तो भगवान आके बनाते हैं। तो मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने। कलयुग में मनुष्य, सतयुग में देवताएं, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने। नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाने, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। कितना बड़ा राज है ये, वो बहिष्ट स्वर्ग कहते तो रहते और धर्म वाले, लेकिन वो और धर्म वाले स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो आत्माएं आती ही द्वापर युग से, तो इसीलिए स्वर्ग को कहाँ देख सकेंगे। सतयुग त्रेता में स्वर्ग है और वो द्वापर से आती है, तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि हम तो आधा कल्प स्वर्ग में राज्य करेंगे, तो कितना सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। मसे फलाना मरा तो स्वर्ग में गया, हम भी जा सकते हैं, समझते हैं मरने के बाद ही जा सकते हैं। तो मरने के पहले, और मरने के पहले न भगवान मिलता है न स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद ही भगवान भी मिलता है स्वर्ग भी मिलता है। तो कौन सा मरना, बाबा कहते ये जीते जी मरना। परंतु ये थोड़ी समझते कि हम भी हेवन में जा सकते हैं, किसको भी पता नहीं है। भारतवासी ये भूल गए हैं, हेवन को लाखों वर्ष कह देते। सतयुग अगर कहते भी हैं स्वर्ग था तो उसको भी लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद ही कहते हैं कि हमारे से 3000 वर्ष पहले हेवन था, क्राइस्ट के 3000 साल पहले हेवन था, पैराडाइज था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएगा, मनुष्य थोड़ी गॉड गॉडेस बनाएगा, गॉड ही आकर गॉड गॉडेस बनाएगा। लेकिन क्या अंतर है गॉड और गॉड गॉडेस में, वो कैपिटल GOD है और वो गॉड गॉडेसेस ये स्मॉल GOD GODESS कहेंगे, तो वो कैपिटल GOD तो एक ही है। इसलिए ये अंतर बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, क्या मेहनत करो, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। जिबान भी कोई कम नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते, किसके सामने बोल रहे हैं वो भी नहीं देखते, गुस्सा आया बस बोल दिया। कर्म इंद्री जिबान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे, समझते थोड़ी है कि ये भी पाप है। चोरी हुई ना, बाबा हमेशा कहते हैं चलो आपको घर है, कहेंगे हमारा घर है ना, हम जो चाहे सो खाएं, लेकिन जो इंचार्ज है उनसे पूछना होता है, कुछ भी लेने से पहले उस इंचार्ज से पूछना होता है, ऐसे नहीं यहाँ घर है जो कुछ भी करे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समझते थोड़ी है कि ये भी पाप है, चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना ये तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है, आज एक छोटी चीज उठाई कल तो बड़ी चीज भी उठा लेंगे, तो चोरी की आदत पड़ जाती है। तो कख का चोर सो लख का चोर हो जाता है, बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो तो जाएंगे, सत्युग में कोई आएंगे, कोई त्रेता में आएंगे, त्रेता के अंत तक भी आएंगे, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कहां राजा रानी और कहां प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए, कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है। पोता मेल निकालना चाहिए, व्यापार है ना, हम भी बड़े व्यापारी हैं। बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, हम क्या बाबा को देते हैं और बाबा देखो हमको क्या देते हैं। मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो श्री मत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे। सावधान भी करते हैं बाबा, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहां कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो क्या करो, अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूले तो बहुत होती रहती है, आंखें भी बड़ा धोखा देती है, तरस पड़ेगा। हाँ, आंखें कैसे धोखा देती है, थोड़ा आकर्षण है ना उसके के प्रति, तो फिर उन पर तरस पड़ता है, मैं भी खाऊं तो फलाने को भी खिलाऊं, तो आंखें बड़ा धोखा देती है, तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, इनको सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है, आठ रत्न है मुख्य, फिर नौ रत्न भी कहते हैं, तो नौवा रत्न बीच में कौन सा है, आठ रत्न चारों ओर अंगूठी में और बीच में नौवा रत्न शिव बाबा। तो एक तो बाबा, बाकी है आठ, बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। हाँ, बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती है तो नौ रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वाले से आठ ही निकलते हैं, सोचो तो लाखों बाबा के बच्चे केवल आठ ही 100% कैसे पवित्र होते, 100% बिल्कुल सजाओं से मुक्त। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से आठ ही निकलते हैं पास विद ऑनर्स। आठ रत्नों की बहुत महिमा है, देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है ना कि सिर पर पाप बहुत है, अब खास व्यापारी लोग तो झूठ सच करते ही रहते हैं, तो पाप तो चढ़ता है ना, झूठ बोलना ये भी तो पाप हो जाता है, तो व्यापारी लोग क्या करते हैं अपने पाप को मिटाने लिए, तो करते तो फिर क्या करते हैं, भक्ति में भी चिंता रहती है ना सिर पर पाप बहुत है, तो दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं, या तो दान पुण्य करना है नहीं तो पाप हमारे कैसे खत्म होंगे, इसलिए दान पुण्य करते, वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां तो रावण राज्य ही नहीं, वहां भी ऐसी बातें हो विकारों की या कोई पाप कर्म की, तो फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही न रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ कई कहते बाबा याद नहीं पड़ता, पिता रूप में याद नहीं पड़ता है, तो बाबा कहते अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े, जब बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो बाबा टीचर के रूप में हमें मुरली सुनाते हैं, तो टीचर के रूप में तो याद पड़े। अच्छा भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। हाँ, कैसे तिरस्कार किया है, सर्वव्यापी कहकर तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वो वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। अपना तो नुकसान करते ही है, लेकिन औरों पर भी वो वाइब्रेशंस फैलते हैं ना, तो उनका भी नुकसान करते हैं। तो बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोतामेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। ये है ही, ये दुनिया क्या है, ये है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संबत, विकर्मी संबत है ये। विकर्मा जीत देवताओं के संबत का कोई को पता ही नहीं। तो एक है विकर्मी संबत जिसको विक्रम संबत कह दिया है ना, कल अभी विक्रम संबत चलता है, और दूसरा फिर है विकर्मा जीत संबत, वो सत्युक्त रहता है। तो ये भी है, ये भी है विकर्मी दुनिया, विकर्मी संबत। विकर्मा जीत देवताओं के संबत का तो किसी को पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं विकर्मा जीत संबत को, कितने साल हो गए, विकर्मा जीत संबत कब शुरू हुआ, अभी तो विक्रमी संबत है ना, विकर्मी संबत है, तो विकर्मा जीत संबत कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, 5000 साल पहले। तो विकर्मा जीत संबत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संबत शुरू होता है, 2500 साल हुए। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं, द्वापर कलियुग के राजाएं कोई कम विकर्म थोड़ी करते होंगे। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म बनते हैं, विकर्म बनता नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है, अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना न सके, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बाबा कहते कोई मनुष्य किसी को बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। तो पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने, पहले तो भगवान को पहचाने, भगवान को याद करे उनके वास्तविक स्वरूप में, तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी कहलाए। तो सारा ड्रामा का राज अब तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, बुद्धि वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को बाबा कहते गुरु नहीं कहेंगे। क्यों गुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु का काम क्या है, गति सदगति देना, घर वापस ले जाना। अब वो धर्म स्थापक तो घर वापस तो लेके नहीं जाते, गति सदगति तो करते नहीं। तो उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे, सर्व की सदगति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वो कोई सदगति करने वाले भी नहीं है, धर्म स्थापक सदगति भी नहीं करते हैं, वापस भी नहीं ले जाते हैं। क्या कि और ही बाबा कहते हैं वो धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी, किसी भी देहधारी को याद करो सदगति नहीं होगी उसे, न धर्म पिताओं को याद करने से होगी, न देवताओं को याद करने से होगी, न कोई साधु संन्यासी गुरुओं को करने से होगी। कब होगी सदगति हमारी, जब एक निराकार को याद करेंगे, निराकार बन करके बाबा कहते हैं। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी, विकर्म विनाश भी थोड़े होंगे। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। देहधारियों की याद माना ये भक्ति की लाइन, उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान तो ज्ञान की लाइन में तो सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम जानते हो कैसे निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, इसलिए ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। तुम पंडे भी हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? हम सभी अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है। अब क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो विकर्म विनाश करने, 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने। दूसरा क्या ध्यान रखना है? 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। और तीसरा ध्यान क्या रखना है? अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। विनाश तो करना है, पर नए विकर्म भी बनाते रहेंगे तो विनाश कैसे होंगे? तो ये तीनों बातें इकट्ठी करनी है, विकर्म विनाश भी करनी है और कोई विकर्म नया बनाना है, और ही 21 जन्मों की इतनी कमाई करनी है, जमा का खाता बनाना है। तो बाबा कहते हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरे तरफ विकर्म न होता रहे। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं विकर्माजीत बनने का, और फिर विकर्म भी करते रहते हैं तो फिर विकर्म तो रह ही जाएंगे। तो दूसरे तरफ विकर्म न होता रहे, पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। चलो विकर्म विनाश करने के लिए पुरुषार्थ किया, बाबा की याद में रहे, पर फिर विकर्म किया तो 100 गुना फिर सजा हो जाती है। जितना हो सके उतना विकर्म नहीं करो, नहीं तो एडिशन भी होगी। पहले से इतने विकर्म है, फिर और विकर्म बनेंगे, एडिशन होगी। इतना कर्जा है, फिर और कर्जा उठाओ तो कितना कर्जा बढ़ जाएगा। तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, पाप तो हो ही जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती है। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं, क्या समझते हैं? कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। यहां तक पवित्रता बाबा कहते हैं, मेरी ये पत्नी है, मेरी स्त्री है, बाबा कहते हैं ये भी ख्याल ना आए। क्या ख्याल आए? बस हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, शिव बाबा के पोतरे हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है। हाँ, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती है? अब आ रही है ना राखी, फिर से प्रतिज्ञा अपनी दोहरानी है। तो राखी बांधी है फिर आंखें क्यों धोखा देती है? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्री के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए, बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे, ऐसा टीचर कभी मिल न सके। भगवान हमारा टीचर, सारे कल्प में ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं इस ज्ञान को। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम ही जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, बच्चे ये करो ऐसे करो, फिर यहां से उठे तो खलास। देखो बाबा कहते खलास, सोडा वाटर। कई बाबा ने एक बार कहा ना, तो अभी तो यहाँ झोली भरते हैं और जैसे ही बाहर गए झोली को खाली कर देते हैं, सब भूल गए। तो बाबा कहते हैं फिर यहां से उठे तो खलास। ये नहीं समझते क्यों खलास हो जाता? क्योंकि ये नहीं समझते कि ये शिव बाबा हमको कहते हैं। शिव बाबा ने ये कहा, कोई मनुष्य आत्मा ने नहीं कहा। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, इनका फोटो भी नहीं रखो। ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा, ये शिव बाबा ने कहा है, इनका फोटो भी नहीं रखो। ये रथ तो लोन लिया है ना, ब्रह्मा तो रथ, वो तो लोन लिया है। ये भी पुरुषार्थी है, ये भी कहते हैं कि मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूं। तुम्हारे सदृश ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, ब्रह्मा बाबा ये तो साकार मुरली है ना, तो कहेंगे कि स्टूडेंट लाइफ में है। अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो बाबा अव्यक्त हुए, संपूर्ण हुए, अभी तो बाप समान बन गए, शिव बाबा के साथ है इसलिए इकट्ठे हैं, बाप दादा कहते हैं। तो तुम्हारे सदृश ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी बहुत महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता रहेगा कि भगवान पढ़ा रहे, कैसे मानो, कैसे मानो, भगवान ऐसे कैसे मानो। हाँ, संशय उठता रहेगा क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। मैं नहीं मानता, ऐसे भी कह देते, मैं नहीं मानता। अच्छा, मानते नहीं हो तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे। अब शिव बाबा को याद करना है तो उनको मानना तो पड़ेगा ना कि शिव बाबा ने अपनी पहचान खुद दी है ब्रह्मा द्वारा। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे, फिर तो विकर्म भी विनाश नहीं हो सकेंगे। ये सारी नंबर वार राजधानी स्थापन हो रही है, दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है। जब विवाह होगा, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो खाली दहेज नहीं मिलती है, धन केवल नहीं मिलता है, दास दासियां भी मिलती है। नहीं तो वहां ससुराल में जाएंगी, नए नए दास दासी होंगे, अब उनको क्या पता है कि इनको क्या चाहिए। तो जो पहले से उनकी दास दासियां वही साथ में जाती है क्योंकि उनको पता है कि हमारी महारानी को क्या चाहिए। तो बाबा कहते हैं दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है। यहां ही इतनी दासियां रखते हैं, उस समय तो द्वापर कलयुग के भी राजाएं, वह जब राजकुमार का विवाह होगा कितनी दास दासियां मिलती होगी। अभी भी धनवान व्यक्ति है तो कितने दास दासी, कितने नौकर चाकर उनके होते हैं। यहां ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होगी। ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी अगर हम मर जाएं तो क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आप ही देखो, अंत में नंबर वार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, हो जानी है अंत में। ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में तो रात दिन कितना बिजी रहते हो। सबसे ज्यादा बिजी कौन रहते हैं ना, कौन से धंधे में। बाबा कहते हैं सट्टे का व्यापार, जो सट्टा का व्यापार करते हैं ना, सारा दिन लेन देन यही होता रहता है सट्टे के व्यापार में। तो सट्टे वाले जो होते हैं वो एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलता रहता है। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे। सट्टे का जो व्यापार करता है वो ज्ञान में कभी चल नहीं सकता, सारा दिन पैसा 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 ही उनकी बुद्धि में रहता है। तो ऐसे कारोबार करने वाले क्या कभी, बाबा कहते हैं, क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे, बाबा के बच्चे बन सकेंगे। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे। कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। फुर्सत कहाँ? अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हाँ, कई बार हम कई स्थानों पर जाते, हमारी माताएं आती है, बहन जी मेरा पति ज्ञान में चल तो रहा है लेकिन उसको वो सट्टे का बहुत काम करता, सट्टा सारा दिन बस वही पैसा 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 है उसकी बुद्धि में। अब आपसे मिले ना तो आप उनको कहना ये सट्टे का व्यापार बहुत गलत है, बहुत खराब है, जरूरत नहीं है, कितना धन चाहिए, आप उनको समझाना। तो बेचारी माताएं अपने पति के लिए फिर हमको कहेंगे इनको बताओ, हम कहते हैं तो वही दीदी से मान जाएंगे ये व्यापार सट्टे का खत्म करेंगे। यहाँ भी होंगे कई सट्टे का व्यापार पहले करने वाले, अभी तो नहीं करते ना, अगर करते भी होंगे हाथ नहीं उठवाती हो, लेकिन करते होंगे। तो बाबा कहते हैं अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाई मिलती है बाप को जब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी नहीं मिलता है। भले देवताओं को भी याद करते पर है तो देदारी ना। तो बाबा कहते उनकी याद से तो कुछ भी नहीं मिलता। तो बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है, एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजा पिता है तो वो भी बाप, ये भी बाप। शिव बाबा तो बाप है ही है पर ये प्रजा पिता है तो ये भी बाप हो गया। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। हाँ, प्रेम के आंसू आते हैं, भाइयों को कम आते होंगे, बहनों को ज्यादा आते होंगे ना। माताएं जिनको प्रेम के आंसू आते हैं बाबा की याद में हाथ उठाओ, देखो कितनी हाथ उठाती है, प्रेम के आंसू। और भाई हाथ उठाओ जिनको प्रेम के आंसू आते हैं, देखो अच्छा इतना आते हैं प्रेम के आंसू, वेरी गुड। चलो फिर भी बहनों से तो कम ही होगा। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते, कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। कई बिचारी तड़पती है, मधु बनाने नहीं देते उनके पति, तो तड़पती है प्रेम के आंसू बाबा के लिए निकालते हैं। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े, भले साक्षात्कार हो भी जाए तो भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं ना भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे। आगे चल के बाबा कहते हैं तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे ना अभी बस अंत आया है तो खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। तो बाप राय देते हैं, सारी मुरली सुनी बाबा कहते हैं, अब बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, इतना समय गंवाया अब पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रहे विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हैं। और बाबा ने कौन सा मिसाल दिया, मेकअप करो माना फास्ट जाओ, तो जैसे ट्रेन लेट होती है ना, अब उसको टाइम पर पहुंचना है परंतु लेट हो गई है तो क्या करेगी ट्रेन, वो जो उनका होता है ड्राइवर वो यही सोचेगा ना थोड़ा मेकअप कर ले ताकि हम जहाँ पहुंचना है वहाँ टाइम पर पहुंचे, तो फास्ट जाएंगे, स्पीड थोड़ी और फास्ट करेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, थोड़ा और तेज जाओ और थोड़ा जल्दी उठो और थोड़ा बाबा की याद में रहो, तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। मधुबन में आते हैं खास भट्टी करने तो यहाँ तो बहुत मेकअप करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ, बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चा गिराओ, तो मनुष्य समझे कि ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे न कहे, सबको मालूम पड़ना चाहिए जो ऐसे फिर न कहे कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा, कोई उलहना न दे अंत में, इसीलिए सबको संदेश देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्म इंद्री के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों को धोखे से, कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसीलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरअहंकारी और निर्विकारी भव। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरअहंकारी और निर्विकारी भव। निरंकारी और निराकारी भव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना, नया जीवन मिला तो बालक बन गए। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। अभी बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के बादशाह, विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, ये स्मृति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना माना, बच्चा बनना माना माया से बच जाना। बच्चा बन जाओ तो माया से बच जाओगे। स्लोगन, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित रहो। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित रहो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। उसके अंतर्गत जो कार्य आज के अनेक पदम पति नहीं कर सकते हैं, वो आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदम पति बना सकता है। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, तब ये शक्ति कमाल के कार्य करेगी। दीदी जी का ये महीना है तो आज 17 तारीख है। आज की दीदी की विशेषता, आज 17 तारीख क्या हुआ, इसमें है ही नहीं आज, पता नहीं, इसमें 27, 28, 15 के बाद 27, 28। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा। भट्टी के भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि आज आपको आपको सौगात कल नहीं, आज ही रात शाम को मिलेगी सौगात, इसीलिए सौगात आज ही लेनी। तो ये वास्तव में तीन पन्ने थे और दो ही पन्ने। मेडिटेशन हॉल में होगी क्लास के बाद। आज 17 तारीख है। मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष अन्न दोष न लग जाए। दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित नहीं होने देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचारी बनकर रहना। हमें भी ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा को दृढ़ता से पालन करना है। धरत परिये धर्म न छोड़िए, पवित्रता ही हम सबका पहला धर्म है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज हम सब बच्चों के लिए विशेष दिन है, गुरुवार का दिन। प्यारे बाबा से हम सब मिलन मनाते हैं। बाबा भी बच्चों को वतन में बुलाकर खूब पहला बाबा से मिलन मनाए। तो आज का शुभ अवसर है कि हर एक को बाकी चाहते हैं कि एक अकेली संदेशी आए। बाबा को होता है कि सब संदेशियां भी और सब भाई बहने वतन में आए। तो आज आप सब बाबा के पास वतन में जाएंगे और फिर बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूहान करेंगे और बाबा जो बच्चों को सुनाएंगे वो फिर भोग के बाद आप सबको सुनाया जाएगा और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की होगी और 2 लाइनें भट्टी की टीचर्स और माताओं की। भाइयों की लाइन उस साइड होगी और भट्टी की टीचर्स और माताएं 1 लाइन यहाँ और 1 लाइन यहाँ होगी और बाकी 2 लाइनें जो होंगी अन्य बहनों की होंगी। अच्छा, अभी हम सभी चलते हैं वतन में बाबा के पास और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। अच्छा, क्योंकि कल मधुबन और हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनों का कार्यक्रम है, जिसके लिए मधुबन और हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहने जैसे हर वर्ष प्यारी दादी और बाबा बच्चों को कपड़ा देते हैं उसके लिए जाएंगे। इसलिए भट्टी वालों की सौगात भी आज शाम को रखी है और भट्टी की टीचर्स बहने, पार्टी की नहीं, भट्टी की टीचर्स बहने ध्यान देंगी आज शाम को 5 से 6 के बीच में सेंटर की और रास्ते की टोली 5 से 6 के बीच में टोली डिपार्टमेंट से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कल मधुबन वाले कुछ बिजी होंगे। तो इसलिए फिर से बता रहे हैं, टीचर्स बहने, भट्टी की टीचर्स बहने, आज शाम को 5 से 6 टोली डिपार्टमेंट से अपने सेंटर की और रास्ते की टोली टोली डिपार्टमेंट से ले लेंगे। बाकी जो नीचे से आए हैं एक दिन के लिए वो अपने रास्ते की टोली शांतिवन से ही लेंगे। अच्छा, ओम शांति।
में देह धारण कर बाबा के पास जा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के
कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद। अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी बहुत स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची वतन में बाबा एक पहाड़ी पर खड़े हुए थे और वह पहाड़ी भी बहुत सुंदर चारों तरफ गोल्डन लाइट से चमकती हुई दिखाई दे रही थी। बाबा का भी स्वरूप बहुत प्यारा सा दिखाई दे रहा था तो उस पहाड़ी के सामने नीचे क्या देखती हूँ भक्ति का बहुत सुंदर दृश्य था और उससे कोई खुशी से अपने इस प्रकार की भावनाओं को लेकर प्रभु के पीछे अपने संकल्प अर्पण कर रहे हैं
तो फिर बाबा ने देखा, मैं क्या देखती हूँ, बाबा के सामने एक तरफ बहुत सारे बच्चे खड़े थे और बाबा ने जैसे उनको दृष्टि दे रहे थे, तो दृष्टि देते क्या देखती हूँ, कुछ बच्चों के सिर के ऊपर एक बहुत सुंदर कलश दिखाई दे रहा था और कुछ बच्चों के कंधे के ऊपर, वो लोग तो कांवर उठाते, कांवर नहीं था, कंधे के ऊपर बहुत सुंदर ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था, एक तरफ बाप और दूसरी तरफ दादा और बीच के अंदर ऐसा परिवार ड्रामा, गोल सर्कल के अंदर जैसे नई सृष्टि दिखाई दे रही थी। और फिर कई बच्चों के हाथ में एक बहुत सुंदर शिव बाबा का झंडा था और उस झंडे से चारों तरफ लाइट निकलती, तो चार पूरे विश्व के अंदर वो लाइट की किरणें फैल रही थी। बाबा ने कहा, देखा बच्चे, संगम का महत्वपूर्ण यादगार भगत मना रहे हैं, लेकिन बाप ने बच्चों को विश्व में बाप की प्रत्यक्षता के लिए जिम्मेवारी का कलश दिया है और सेवा करने के लिए, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने बच्चों को बाप दादा का साथ दिया है। बच्चे केवल निमित भाव से और बाप साथी हैं इस भाव से चलते हैं तो उन्हें इस जीवन के अंदर हल्कापन है, सेवा की सफलता है। और फिर बाबा ने क्या किया, वो जो झंडा बच्चों को दिया था तो बाबा ने ऐसे हाथ किया और वो झंडा बाबा के हाथ में पहुंच गया और उस झंडे से चारों ही तरफ लाइट निकलती और लाइट की सुंदर सुंदर किरणों से भक्तों के ऊपर जैसे न गुलाब वाशी होती है, एक एक बूंद गिर रही थी और उस एक एक बूंद में उनको कुछ न कुछ अनुभूति हो रही थी। बाबा ने कहा कि बाप बंधा हुआ है भक्तों की भावना का रिटर्न देने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए बाप किस बात में बंधा हुआ है, बच्चों के लिए बाप उनके अधिकार स्वरूप और उनके संपन्न स्वरूप और उनके अंदर की जो अनुभूतियां हैं उसका अनुभव कराने के लिए बाप भी बच्चों के स्नेह का रिटर्न देते हैं। तो जैसे ही बाबा ने कहा तो हर बच्चे के पास क्या था, इतना सुंदर एक देख रहे थे कलश था जो उनके सिर के ऊपर रखा हुआ था, उस कलश से भी ज्ञान रतन दिखाई दे रहे थे और वो जैसे कलश को ऐसे करते उससे रतन निकलते वरदान के रूप में एक एक के पास पहुंच रहे थे। और दूसरा स्वरूप में दिखाई दे रहा था फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने कहा बाप बच्चों को समय प्रमाण और सारे विश्व की आत्माएं एक कुछ फरिश्तों को ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारी पुकार सुने, कोई हमारे को रास्ता दिखाए। तो बच्चों को अभी इस समय अपने यादगार के स्वरूप, उसी स्वरूप के द्वारा भक्तों को अनुभव कराना है। फिर बाबा ने वो झंडा जो दिखाया तो झंडा सब बच्चों के पास था और वो झंडा सबसे ऊंचा, बाबा का झंडा सबसे ऊंचा पहुंचता जा रहा था, एकदम टॉप पर जैसे आकाश की तरफ पहुंचा है। और उस झंडे से चारों ही तरफ लाइट जो सारे विश्व के अंदर दिखाई दे रही है और सारा विश्व चमकता हुआ नए वृक्ष की तरह से, नए सृष्टि की तरह से दिखाई दे रहा था। और उसकी तरफ जो बच्चों के हाथ में झंडे थे, वो झंडे चारों ही तरफ विश्व के पांचों ही कॉन्टिनेंट में चारों ही तरफ उसको ऐसा घेर के खड़े थे, और वो झंडे से विश्व के सभी कॉन्टिनेंट के अंदर एक लाइट में, और लाइट में बाबा दिखाई देता, और वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, वो एक ही कहते थे, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा आ गया है, और मेरा बाबा मेरा साथी है, और जिसे बहुत खुशी में झूम रहे थे। तो बाबा ने कहा, अभी समय है बच्चों को भक्तों की भावनाओं का रिटर्न देने का, चाहे कणा दाना देना पड़े, और समय है भक्तों को इष्ट के रूप में उनके सामने कुछ न कुछ अनुभूति कराने का। इसके लिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि फरिश्ता बनकर विश्व के अंदर चक्कर लगाओ, और पूरे विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता की जिम्मेवारी का कलश बाप ने जो बच्चों को दिया है, बच्चे कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे कई बातों के अंदर थकावट महसूस करते हैं, जैसे वो भगत कितनी भी रुकावटें आए, रास्ता कितना भी टेढ़ा हो, लेकिन वो अपने यात्रा को बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो बच्चों को भी ये थकावट या आलस्य के जो रुकावटें आती हैं, उसको पार करते हुए बाप ही साथी हैं, बाप ही की छत्र छाया में हैं, बाप ही हमको साथ ले जा रहे हैं, ये पक्का रहेगा। तो ऐसे उड़ेंगे जैसे पता ही नहीं पड़ेगा कि हम उड़ने रहे हैं, बाबा ही उड़ा रहे हैं। फिर तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को सामने इमर्श करते हुए बहुत प्यार दे रहे थे। फिर बाबा ने खुद ही कहा, बाप को मालूम है कि आज बाप के पास कौन से बच्चे आए हुए हैं। बाबा ने कहा, ये ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी मजबूत, जिसके लिए शेरनी बच्ची ने ऐसे मजबूत, चंद्रमणि दादी के लिए बोला, ऐसे मजबूत फाउंडेशन डाला, उस स्थान से बच्चों ने भी बहुत कुछ अनुभव और बाप के साथ के विशेष प्राप्तियां कर रहे हैं, सबको याद दिया। फिर जिनके भोग थे उनके बारे में भी बाबा को बताया। बाबा ने कहा, सबके संकल्प बाबा के पास पहुंचे, और बाबा ने उन बच्चों के संकल्पों का उनको जवाब दे दिया है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, तो बाबा ने भी वतन में सबको भोग स्वीकार कराया, और भोग स्वीकार कराते ही बाबा ने सबको एक छोटी सी गिफ्ट दी, और उस गिफ्ट में लाइट निकल रही थी, ऐसे स्टार जैसा दिखाई दे रहा था। उसमें लिखा था, विघ्न प्रूफ समृद्धि स्वरूप बनो, विघ्न प्रूफ समृद्धि स्वरूप बनो। और सबको बाबा ने याद दिया, ओम शांति।